भौमी जांकुर जनना भौमी जांकुर जनना रागाद्याक्षय मुपागतायस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरोजिनो वा नमस्तस्मै। जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि महाराज की। जीवन में पर्व इसलिए आता है कि हम अपने जीवन को अध्यात्म से जोड़ सकें। जो हमारा दर्शन है, जो हमारे सिद्धांत हैं, जो हमारा अध्यात्म है, उस सब को हम जीवन से जोड़ें। इन 10 दिनों में हमें जो कुछ भी हम जिए उसमें आत्मनिरीक्षण करने के दिन हैं कि देखें हम किस तरह जीते हैं। इसलिए अधिक से अधिक समय हम अपने आत्मावलोकन के लिए देते हैं। आप निकाल रहे हैं इतना समय, ये सुखद है। आज सरलता का दिन है, पर सरलता एक्चुअली है क्या चीज़, ये शायद परिभाषित नहीं किया जा सकता। जी करके देखा जा सकता है, अनुभव तो किया जा सकता है। परिभाषाएं ऐसी बनाई जा सकती कि क्रोध के अभाव का नाम क्षमा है, मान के अभाव का नाम मार्दव है, और मायाचारी के अभाव का नाम सरलता है, ऋजुता है, और कल लोभ के अभाव का नाम शौच है। ये तो बनाई जा सकती परिभाषाएं, लेकिन उत्तम क्षमा मार्दव आजो भाव है। ये बहुत भावात्मक चीज है, इसे सिर्फ परिभाषित नहीं किया जा सकता। एक बहुत पहले फोटोग्राफर हुआ, पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ, पर मैंने पढ़ा था। वो फोटोग्राफर 3 तरह के फोटो खींचता था लोगों के। पहला वो फोटो खींचता था, कोई भी पहुंच जाए, पहला फोटो वो खींचता था जो कि वो दुनिया के सामने होना चाहता है। दुनिया के सामने वो जैसा होना चाहता है वैसा फोटो खींचता था। उस फोटो की कीमत 25 रुपये हुआ करती थी। एक दूसरा फोटो भी वो खींचता था कि एक्चुअली दुनिया उसे किस तरह देखती है। ये दूसरे नंबर का फोटो 10 रुपये का खींचता था, सस्ता था ये, लेकिन इससे भी सस्ता फोटो खींचता था कि एक्चुअली आप हो जैसे वैसा फोटो आएगा, वो 5 रुपये का खींचता था। उसने अपने अनुभव में लिखा कि पूरी जिंदगी दुकान खोली और सोच करके यही कि लोग तो वैसे ही खिंचवाएंगे जैसे हैं, लेकिन पूरी जिंदगी किसी ने 5 रुपये वाला फ़ोटो नहीं खिंचवाया, सबने 25 का खिंचवाने की कोशिश की कि मैं लोगों को ऐसा ऐसा दिखूं, ऐसा फ़ोटो खींचता हूँ, मैं लोगों को बहुत अच्छा दिखूं, मैं हूँ कैसा, ऐसा फ़ोटो खींचने के लिए किसी ने नहीं कहा। ये तो उसके अनुभव की बात थी। हम अपने जीवन के अनुभव में भी शायद यही बात पाते हैं कि हम जैसे हैं वैसा हम वैसा हम प्रकट नहीं कर पाते। हम चाहते हैं कि वैसे हम प्रकट कर दें, लेकिन इसके बाद भी जब जो व्यक्ति हमारे सामने आता है उसके सामने एक परसोना, एक मुखौटा लगा लेते हैं, बस इसी का नाम है शर्म, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमें किससे किस तरह बात करनी चाहिए, किससे किस तरह मिलना चाहिए, ये बिल्कुल जुदी चीज़ है, वो हमारे मैनर्स में शामिल होगा। लेकिन किस व्यक्ति को किस तरह से चीट किया जा सकता है, किस व्यक्ति को किस तरह से छला जा सकता है, इस इंटेंशन को लेकर के और फिर हम कोई मुखौटा लगाते हैं, वो कहलाता छल। पिता के सामने अदब से बात करनी चाहिए, ये तो ठीक है, लेकिन बाहर तो बेटा गर्दी करके आएगा ही आएगा, क्लास में बैठा हुआ है और हल्ला कर रहा है, और गुरुजी जैसे ही आए तो फिर सब शांत हो गए, इसको क्या समझेंगे आप, फ्रॉड कहेंगे क्या? नहीं, बट नेचुरल, ये तो होगा ही होगा। लेकिन अब जब गुरुजी तख्ते पर लिख रहे हैं तब धीरे से चिटपिट निकाल करके चटपट बजा दी, फिर गुरुजी ने पीछे मुड़ के देखा तो सब चुपचाप बैठे हैं, कौन ने बजाई पता नहीं। अब ये गड़बड़ हो गई, अब ये छल हो। पहले जब गुरुजी आए थे तो बड़े आराम से बैठ गए थे, तब तो वो नेचुरल था, उसमें कोई छल नहीं था, लेकिन अब गुरुजी का रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, अब गुरुजी को चीट करने की कोशिश कर रहे हैं कि खोजो कौन है जो कि उपद्रवी है। ये छल है, और अपन सब समझते हैं, सरलता भी समझते हैं। थोड़ा सा ये समझ लें कि छल से हमारा बिगड़ता क्या है। जिस चीज़ से कुछ बिगड़ता हो, जिस चीज़ से कुछ बनता हो, दोनों बातें हैं। छल क्या बनाता है हमें? छल हमें अविश्वासी बना देता है, कोई व्यक्ति हम पे विश्वास नहीं करता, हमारी अथेंटिसिटी खत्म हो जाती है, हमारी प्रामाणिकता नष्ट कर देता है छल। अगर आपको प्रामाणिक होना है तब फिर ये तय है कि छल से बचना पड़ेगा। अगर आप प्रामाणिक होना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप छल स्वीकार करिए। दूसरी चीज, हमारी मित्रता को, हमारी मैत्री को छल नष्ट कर देता है। कोई कितना भी अच्छा मित्र हो और उसके सामने अगर आप छल करें तो कितने दिन मित्रता टिकेगी? और यहाँ तो हम बात करते हैं सत्विषु मैत्री की, जो हमें प्राणी मात्र के प्रति मित्रता रखनी है, तो हमें हर जगह हर क्षण कहाँ हम छुपाएंगे? बेटे को केला खाने दिया था गुरुजी ने, तीन बेटों कि जाओ ऐसी जगह खा के आना जहाँ कोई ना देखे, तो एक ने जो है कमरे के पीछे जाकर के खा लिया, दूसरे ने गुफा में जाकर खा लिया, तीसरा वाला ऐसे ही ले आया, चले कोई ना कोई तो देखता है, वो नहीं देखता तो मैं तो खुद देखता हूँ कि मैं खा रहा हूँ, कोई नहीं देखे तो मैं तो देख रहा हूँ, मैं छुपा ही नहीं सकता, अपने से तो नहीं छुपाए, कम से कम अपने से भी जब हम छुपाने लगते हैं तब हमारे भीतर की मित्रता नष्ट हो जाती है। मैं बाहर की मित्रता की बात नहीं कर रहा हूँ, बाहर तो हाथ बढ़ाइएगा चाहे फ्रॉड से बढ़ाइएगा, कोई ना कोई थाम लेता, लेकिन आप भीतर कहीं उसके प्रति मित्रता का भाव अगर पैदा करना चाहते हैं तो छल को हटाना पड़ेगा, दो में से कोई एक रहेगा। आप प्रामाणिक होना चाहते हैं दूसरे की दृष्टि में नहीं अपनी दृष्टि में, और आप अपने भीतर कहीं मैत्री को पैदा करना चाहते हैं तो छल को हटाना। एक सरलता की बहुत छोटी सी बात आपको बताऊं, ये तो छल की बात हुई। बच्चे बहुत सरल होते हैं, नीरज जी सुनाया करते हैं, बच्चों की सरलता सबको अच्छी लगती, लेकिन बड़े लोग सरल हो जाएं, ज्ञान के साथ सरल होना और अज्ञानी का सरल होना, एक इनोसेंट होना, एक बहुत भोला भाला होना, अज्ञानता की दशा में भोलापन आना एक बहुत जुदी चीज है, और एक ज्ञानवान का भोलापन होना एक बहुत उपलब्धि है। वो तो नेचुरल है कि एक अज्ञानी है, नहीं जानता है, बड़ा भोला भाला है, पागल भी भोला भाला लगता बेचारा, जानता नहीं, रास्ते चला जाता, कोई कह देता कुछ भी, हाँ ठीक, क्या फर्क पड़ता, क्योंकि वो नहीं जानता। लेकिन जो जानता हो उसके बाद भी वो भोला भाला बना रहे तो ये उपलब्धि है। हम दोनों तरह की सरलता देख लें, एक बच्चों की सरलता जिससे हम शिक्षा लें, और एक बड़े होने पर हमारी सरलता हमें कितना सुख देती है ये भी हम देखें। थोड़ा सा एक ये भी कोशिश करेंगे कि छल हमें कितनी पीड़ा में डाल देता है ये भी थोड़ा सा देख लेंगे। वैसे हमारे लिए अनुभूत हैं ये सारी चीज़ें, भले ही सरलता से सुख मिला हो या अनुभूत ना हो, लेकिन छल से कितनी पीड़ा हमने पाई है ये हर एक के लिए अनुभूत है। मुझे कोई अलग से अनुभव नहीं सुनाना है, फिर भी चर्चा पर कर लेंगे। नीरज जी ने एक बार ये बात सुनाई थी, मैं वही ज्यों की त्यों सुनाता। मेहमान आए उनके घर में, तो उनके बिटिया का बेटा क्या हुआ भाई, नाती हुआ है ना। तो वो नाती खेल रहा था, वो क्या खेल रहा था, घोड़ा टिक टिक, घोड़ा टिक टिक। तो वो घोड़ा टिक टिक के नाम पर क्या था, एक लाठी थी, उस पर साहब बैठे हुए थे और चल रहा था उनका कि घोड़ा टिक टिक, घोड़ा टिक टिक। तो वो चला जा रहा है, अब उनने दरवाजे में लगा लिया, अब दरवाजे में लगा लिया तो मेहमान को लौटने का समय था, तो उनने कहा ए हटाओ अपनी लकड़ी वकड़ी। जी क्यों सुनने वाले, लकड़ी वकड़ी क्यों हटाएं। तो नीरज जी ने सुनाया तो बोले कि मैं बैठा हुआ था, मैंने देखा कि हटा नहीं रहा है, बड़ा गड़बड़ कर रहा है। लेकिन बच्चे बड़े सरल होते हैं, ये भी सुनते हैं, लेकिन उनके साथ आपको भी सरल होना पड़ेगा। अगर आप थोड़े से कठिन होंगे तो वो आपसे बिल्कुल बच कर के रहेंगे। माँ खाना खिलाती है बड़े प्यार से, और ज़रा सा आँख टेढ़ी हो जाए बंद कर देता हूँ, पहले क्लियर कर लो बात क्या है, फिर उसके बाद खाएंगे। क्या समझ रखा आपने, हाँ आपके मंदर क्या डोल गया क्या पता, आप ऐसे कैसे देख रहे हैं, आप अभी तो अच्छे से देख रहे थे। ऐसे ही जब उनने कहा कि लकड़ी हटा लो अपनी, तो उसने नहीं हटाया, इनको स्ट्राइक हुआ। तो नीरज जी ने धीरे से कहा अच्छा बेटे देखो तो अपना घोड़ा तो एक तरफ कर लो, हमारा राजा बेटा है अपना घोड़ा एक तरफ कर लेगा, अंकल को निकलना है ना। तो बेटे ने अपना घोड़ा अलग कर लिया। आप उसके घोड़े को घोड़ा मानिएगा, वो सरल है, आप लकड़ी कैसे मान सकते हैं उसको। जब उससे कहा कि लकड़ी हटा लो, नहीं हटा सकता वो, समय तो वो घोड़े बैठा हुआ है, आपके घोड़े अलग हुआ करते हैं, आप उसकी लकड़ी को लकड़ी समझते हैं, और जब आप बैठते हैं तब आप उसको घोड़ा समझते हैं। ये सरलता है बच्चों की। और एक और सरलता बच्चों की, घर में पापा हैं अंदर नहा धो रहे हैं, और कोई मित्र उनसे मिलने आए हैं, और बेटे जी से उनने पूछा कि पापा अंदर हैं क्या, देख के आते हैं, गए तो क्या कि फलाने अंकल आए हैं, अब पापा को उनसे मिलना नहीं था। तो उनने कहा बेटे जाके कह दो कि है नहीं पापा। तो बेटे ने भी कह दिया कि पापा कह रहे हैं कि पापा है नहीं भाई, जैसा उन्होंने कहा था वैसा उसने कह दी। ये सरलता है, ये सरलता है, इसमें कहीं कोई दूसरे के साथ छल नहीं है, न दूसरे को चीट करने का कोई विचार है इसमें, जैसा है वैसा इंटरप्रिट करते हैं हम, जो जैसे जितने हैं वैसा ही अपने को शो करते हैं, वैसे जो जैसे जितने हम होते हैं वैसा शो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कम या ज़्यादा शो करने की ज़रूरत पड़ती है। तो जिन क्षणों में हम ऐसा तो कर सकते हैं कि हम कुछ ऐसी जगहें अपने लिए तय कर लें, मैं सोचता हूँ कुछ जगह हर आदमी के जीवन में होनी चाहिए जहाँ की वो निष्कपट हो सके, जहाँ की वो निश्चल हो सके, जहाँ अपनी सारे आवरण को उतार करके और सारे दुराव को, सारे कॉम्प्लेक्सेस को, कॉम्प्लेक्स कहलाता जटिलता, ग्रंथित हो जाना, घुमाओ फिराओ की जिंदगी जीना। एक मित्र मिले, कब आए भैया, बहुत दिन बाद दिख रहे हो, कहला अब तुम्हें फुर्सत ही नहीं है, अभी तो आए सवेरे। दूसरे मित्र मिले, अरे कब आए भाई, अरे तुम्हें फुर्सत हो जब ना, 8 दिन से आए हुए हैं, तुम्हें तो फुर्सत ही नहीं मिलने की। तीसरे मित्र मिले, जब तक तीसरे मित्र मिले उनसे कुछ कहें, जब तक वे दोनों मित्र मिल गए, अब क्या कहोगे तीसरे मित्र से, अगर उन दोनों ने, अब डर रहे हो कि अगर इसने कह दिया कि ये तो कह रहा था कल आए थे, वो ये कह रहा था कि 8 दिन पहले आए, अब बहुत मुश्किल पड़ती है, मित्रता खंडित हो जाती। हमारी इस तरह की छोटी छोटी सी क्रियाएं एक ऐसी जगह तो होनी चाहिए जहां हम इस तरह ग्रंथित ना हो, जहां हम कॉम्प्लिकेटेड ना हो, अपने लिए और दूसरे के लिए, जो ग्रंथियों को तोड़ देता है, जो निर्ग्रंथ हो जाता है वास्तव में, वो सरल हो जाता है। ये सारे धर्म इसलिए एक साधु के लिए हैं जो निर्ग्रंथ है, वो व्यक्ति ही उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम मार्दव। लेकिन श्रावक भी इन सब को थोड़ा थोड़ा करके, वो अगर पूरी तरह नहीं कर पाएगा तो पार्शियली तो कर सकता है, एक ऐसी जगह खोज सकता है जहाँ दिन भर में जो छल कपट किया है वहाँ जाकर के कह सकता है कि आज तो मेरे से ऐसा हो गया। लेकिन मुश्किल ये है, इसके साथ में एक और मुश्किल भी जुड़ी हुई है वो ये कि हम अगर हर जगह छल कपट से मुक्त नहीं हो सकते और किसी एक जगह होते हैं तब भी फिर हमारी एक फॉर्मेलिटी जैसी हो जाती है कि ठीक है सबसे छल कर लो, भगवान के सामने जाकर के सब कुछ के आएंगे। तो एक एक धर्म ही ऐसा बना हुआ है जिसमें ऐसा है कि चाहे जितने पाप कर लो और जाकर के और वहाँ परमात्मा के सामने के आओ कि हमसे सब हो गया, मगर दूसरा ना सुन पाए, ये बात है। इतना जरूर ध्यान रखा जाता है, वो स्थान बना रहता है और वहाँ जाकर के चर्च में और क्या है कि हमने जो कुछ भी किया है हम स्वीकार करते हैं, अपना छल जो हमने किया है वो भी स्वीकार करते हैं, जो पाप किया है वो भी स्वीकार, लेकिन इतना पर्याप्त नहीं है। पर फिर भी कह तो रहा हूँ कि इतना भी कर सकें तब भी बहुत है, पर इसके साथ भी छल हो सकता है। टॉलस्टॉय ने एक अच्छी कहानी लिखी, वो ये कि एक बार वो खुद टॉलस्टॉय अर्ली मॉर्निंग सुबह 5 बजे उन्होंने सोचा कि अकेले जाएंगे जरा मन से परमात्मा को याद व्याद करें, तो 5 बजे पहुँचे, लेकिन उन्होंने देखा कि चर्च खुला हुआ है और उनसे पहले कौन आया, तो देखा तो एक साहब जो है वहाँ पर खड़े हुए और प्रार्थना वार्थना कर रहे हैं, वो बड़े धीमे धीमे स्वरों में, उनको तो ये मालूम था कि यहाँ कोई नहीं है, लेकिन ये दबे पाँव जाकर के उनके पास खड़े हो गए थे, तो प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान वो जो पिछले दिनों एक हत्या हुई थी वो मेरे ही से, अब आपसे क्या छुपाना, मैं बहुत पापी हूँ, बहुत अपराधी हूँ और मुझे क्षमा कर दें। अब ये जो है उनने कहा भगवान से, सुन लिया पीछे टॉलस्टॉय ने। अब जब वो मुड़े तो टॉलस्टॉय ने देखा कि नगर सेठ है ये तो, और उनने भी देखा कि ये तो टॉलस्टॉय है, तो उन्होंने धीरे से कहा कि मैंने जो परमात्मा से कहा वो तुमने सुना तो नहीं? कहले नहीं, मैं तो आपके चरण छूने तैयार हूँ, आप इतने विनम्र और इतने सरल हैं, मैं तो सोच भी नहीं सकता था, और तभी तो आप इतने बड़े वो हैं, और आपका तो मन करता है कि परमात्मा से भी ज़्यादा आपकी विनय करो और आपके प्रति श्रद्धा। कहले और बाकी छोड़ो, कहले ये बताओ सुना तो नहीं? कहले नहीं सुना होता तो आपके प्रति श्रद्धा कैसे जागती? बोले मिस्टर अगर तुमने सुन लिया है तो बाहर जाकर के नहीं कहना, नहीं तो मानहानि का दावा कर दूंगा, क्योंकि मैंने तुमसे नहीं कहा, मैंने परमात्मा से कहा। जो व्यक्ति व्यक्ति से सहज नहीं हो सकता वो परमात्मा से कैसे सहज हो सकता? जो व्यक्ति इंसान से छल कर सकता है वो एक दिन परमात्मा से भी छल कर सकता है। इसलिए बहुत सावधानी की आवश्यकता है कि परमात्मा के सामने निश्चल होने का अर्थ सिर्फ इतना नहीं है कि एक जगह हमने पाली है जहाँ कि हम निश्चल हो जाएंगे बाकी दुनिया में हम छल करते रहेंगे, नहीं, एक जगह इसलिए हमने पाली है कि वहाँ हम निश्चल हो जाएंगे ताकि धीरे धीरे हमें उस निश्चलता का आनंद मिले और हम लोगों के सामने भी धीरे धीरे निश्चल होना शुरू करें। हमारे छल को जब रास्ता नहीं मिलता तो फिर मानहानि का दावा शुरू हो जाता, हमारे सम्मान को ठेस पहुँचती, इसलिए छल से बचने की कोशिश करिए। बच्चों का की सरलता तो आपने, मैंने कहा था कि आपसे कहूँगा, बड़ों की सरलता देखिए, बड़े हो जाने के बाद भी आदमी इनोसेंट हो सकता है, भोला भाला हो सकता है, और वो भी एक घटना नीरज जी ने अपनी माँ की सुनाई थी, रीठी में थी उनकी माँ, बोले बहुत छोटे की बात है, कटनी में फ़ोटो खिंचा करती थी, रीठी में फोटोग्राफर वगैरह नहीं थे कि फ़ोटो, और उस समय तो वो वैसा कैमरा नहीं था छोटा वाला, वो बड़े वाले ऐसे ढक करके फिर उसके पीछे से वो होल्ड करके देखते ना वैसा वाला, वो बड़ा वाला कैमरा, तो उस बड़े वाले कैमरे में फ़ोटो वोटो खींचने के लिए, और मन करा कि चले सब लोग और फ़ोटो खिंचवाएँ, तो माँ से भी कहा कि चलो माँ फ़ोटो खिंचवा के, अरे कहना नहीं भैया हमें नहीं खिंचवाने फ़ोटो, तो हमारी ज़िंदगी निकल गई, तुम्हारे जाओ नए लड़का बारे हो सो तुम्हारे खिंचवा। तो इन्हें बहुत मनाया कि नहीं चलो अम्मा और तुम्हारी भी खिंचवा दें, एक भी नहीं है फिर हम लोगों को हमेशा याददाश्त के लिए रही आएगी, लेकिन वो नहीं मानी, कहना नहीं तुम लोग जाओ। ये सब तैयार हो गए, पूरी गृहस्थी अकेली अम्मा घर में रहेगी और बाकी सब लोग जाने लगे। जब नीचे पहुंच गए नीरज जी, नीचे पहुंच गए तब माँ ने फिर आवाज़ दी, ए नीरज इतने आओ। अब वापस लौटी कि भाई बात क्या होगी, शायद मन बन गया हो कि चले बाप, शायद फोटो उतराने का मन बन गया। कहले देखो भैया तुम जा तो हो सो जाओ, मनो हमने पहले मना कर दी, हम आई ने खिंचवा लेंगे तुमको, अब बताओ आप कितनी सहजता है, कितना सरल जीवन है कि इसके बाद भी जो है इतने बड़े हो जाने के बाद भी और व्यक्ति को ये कि मुझे इस प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं है, मुझे फोटो की आवश्यकता नहीं है, क्या पता ऐसा कुछ ना हो गया हो कि मेरे नहीं पहुंचने पर भी खिंचवा के न दे आए, इतना सहज। तो क्या हम बड़े होकर के भी इतने सरल हो सकते हैं? बच्चों की सरलता की दाद तो हम दे देते हैं, लेकिन अपने सरल होने का कोई रास्ता? एक जगह मैंने पढ़ा था कि थोड़ा सा बच्चों के साथ रहिए, सरल निश्चल और निर्विकार होने के लिए हर आदमी को 1 घंटे अपने बच्चों के साथ रहना चाहिए। दूसरे अपने बच्चे तो ठीक, दूसरे बच्चे माने बच्चे, अपने पराए नहीं होते बच्चे, बच्चों के साथ रहिए। उनको देखिएगा कि क्षण भर के अंदर इतनी जोर से लड़ाई लड़ते हैं कि जैसे इतने उपद्रवी मालूम पड़ते हैं कि जैसे पूरी दुनिया को मिटा करके रख देंगे इसी समय, लेकिन अगले क्षण इतने शांत बाजू में गुनगुनाते हुए गाते हुए बैठे हैं। ये कहलाती सरलता, कषाय की मंदता। क्षण भर के लिए उद्रेक आया था लेकिन अगले क्षण शांत हो गया। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? हम अपने उद्रेक को भी दबा लेते हैं दूसरे के सामने अच्छा प्रकट करने के लिए, और कभी कभी हम अपने को क्रोधित भी कर देते हैं दूसरे के सामने अपना दबदबा बनाने के लिए। ये सब जो है कपट है। जो व्यक्ति जितना अधिक क्षमाशील होगा, जितना अधिक विनम्र होगा, वो उतना ही सरल होगा। इसलिए तीसरे नंबर पर यह सरलता रखी हुई है। पहले क्षमावान होना पड़ेगा, विनम्र भी होना पड़ेगा, सरल भी होना पड़ेगा। तीसरे नंबर पर कोशिश करिएगा कि ऐसी बच्चों जैसी सरलता बड़े होने पर भी आ जाए, ज्ञान के साथ में आ जाए, तो जीवन सुखद होगा। इसी भावना के साथ में कि हम सब जो है अपना जीवन सरल बनाएं। बोलिए आचार्य गुरु विद्यासागर।